देखिए नमस्कार पल्लवी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद पुणे से हूँ। मैं काम मुंबई में करता हूँ लेकिन खुद हूँ पुणे से। तो देखिए, एक जमाना ऐसा था कि जब पुणे को पेंशनर्स पैराडाइज कहा जाता था, और लेकिन धीरे धीरे शहर की आबादी जो है वो बढ़ती गई, नए एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस शुरू होते गए, आईटी इंडस्ट्री का बड़े पैमाने पे फैलाव हो गया पुणे और आसपास के इलाकों में। तो इस वजह से जो है, इस तरह शहर में जो शहर की जो आबादी है वो बढ़ती गई, शहर बढ़ता गया, नए विभाग जैसे हिंजवड़ी है, कोंडवा है, फिर सिरोही है, उंदरी है, इनका विकास होते गया। लेकिन दुख की बात यह है कि इस बढ़ती आबादी के लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। वो जो है ना, तो वो इस बढ़ती आबादी के लिए नाकाफी है, और इसीलिए लोगों को रिलाय करना पड़ता है ऑटो रिक्शा पे या अपने खुद के व्हीकल पे, और या तो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। तो इस वजह से शायद ऐसा हुआ होगा कि पुणे में जो टोटल लोग हैं, पुणे की जो आबादी है उससे थोड़े थोड़ी ज्यादा जो है पुणे में रजिस्टर्ड व्हीकल्स की संख्या है। लेकिन देखिए, इसका काफी बुरा प्रभाव जो है वो लोगों के हेल्थ के ऊपर होता है। पुणे इन दैट सेंस शेप्ड लाइक अ सॉसर। क्या होता है कि पुणे, अगर आप पुणे की ज्योग्राफी देखेंगे या टोपोग्राफी देखेंगे, पुणे की इर्द गिर्द जो है ना काफी बड़े पहाड़ हैं, काफी बड़ी, जिसे पुणे में टेकड़ी कहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो पोल्यूशन है, जो हवा है, जो एग्जॉस्ट है, वो ट्रैप हो जाता है वहीं पे। पुणे में दिक्कत यह है कि क्योंकि पुणे का शेप ऐसा है तो थोड़ी हवा ट्रैप हो जाती है पुणे के अंदर। तो आप आज भी किसी पहाड़ पे जाएंगे, किसी टेकड़ी पे जाएंगे, पुणे की तरफ देखेंगे तो आपको वहां पे पोल्यूशन का एक क्लाउड नजर आएगा। पुणे में ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत है, क्योंकि एक जमाने में ऐसा कहा जाता था पुणे बाइसिकल्स का शहर है, साइकिल की का शहर है। तो ये जो रास्ते हैं वो उसका, ये बढ़ते हुए व्हीकल्स का लोड नहीं ले सकते हैं। लेकिन ऐसे है कि अभी धीरे धीरे पुणे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे आप जानते हैं, पुणे में दो मेट्रो रूट का काम जो है वो शुरू हुआ है, और एक मेट्रो रूट प्रस्तावित है। तो इसीलिए हम उम्मीद ये कर सकते हैं कि जल्द ही पुणे में जो है एक सक्षम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बनेगी, और लोगों को आज जो प्राइवेट व्हीकल्स पे रिलाय करना पड़ता है वो रिलायंस थोड़ा कम होगा।
जी, ये बताइए धवल कि लेकिन क्या एक तरफ इससे ये भी देखा जा सकता है कि पुणे तुलनात्मक स्तर पर काफी संपन्न शहर है भारत में?
देखिए, पुणे में जैसे मैंने कहा कि आईटी इंडस्ट्री का फैलाव काफी बड़े पैमाने पे हुआ है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पुणे और आसपास के इलाकों में है। तो देखिए, जैसे ये आर्थिक संपन्नता आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है, तो वैसे ही टू व्हीलर और फोर व्हीलर की संख्या भी बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि पुणे में मिडिल क्लास जो है, मध्यम वर्ग जो है, उच्च मध्यम वर्ग जो है, वो काफी सक्षम है, स्ट्रांग है।
अच्छा धवल, ये बताइए कि आप पुणे से हैं तो अब क्या वहाँ पर ये जो समस्या है, क्या पिछले कई सालों में बढ़ी है या उसको नियंत्रण में किया गया है?
पल्लवी जी, ये समस्या जो है वो बड़ी है, और शायद मुझे लगता है आने वाले काल में बढ़ती ही जाएगी। पुणे का जो पुराना इलाका है, जिसे पेठ कहा जाता है, जैसे सदाशिव पेठ है, नारायण पेठ है, शुक्रवार पेठ है, गुरुवार पेठ है, ये जो पुराना इलाका है जिसे हम कह सकते हैं ओरिजिनल पुणे, क्योंकि पुणे का विकास जो है वो वहीं से शुरू हुआ, पुणे शहर वहीं से शुरू हुआ। तो ये पेठ एरिया जो है ना, वहां पे काफी नैरो गलियां हैं, काफी नैरो रस्ते हैं। तो आज भी अगर आप वहां जाएंगे तो ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़े पैमाने पे है। और जैसा कहा जाता है कि लक्ष्मी रोड, जो जो पुणे का जो मेन शॉपिंग इलाका है, तो वहां पे तो पार्किंग के लिए जगह मिलना और वहां पे गाड़ी चलना तो बहुत मुश्किल है।
धवल, ये बताइए कि जो स्थानीय लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर?
देखिए, लोग तो यही चाहते हैं कि एक स्ट्रांग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सार्वजनिक वाहन व्यवस्था जो है बिल्कुल सक्षम हो। अगर ऐसे हुआ तो लोगों को अपने प्राइवेट व्हीकल्स पे रिलाय करना नहीं पड़ेगा। आज आज पुणे में ओला है, उबर है, लेकिन एक जमाना ऐसा था कि जब पुणे के लोगों को ऑटो रिक्शा पे रिलाय करना पड़ता था। तो ऑटो रिक्शा वाले अगर स्ट्राइक पे चले जाए, या ऐसे कुछ हो तो लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। तो लोग भी यही चाहते हैं कि ये पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट जो है उसे सक्षम किया जाए, मेट्रो का काम जल्द से जल्द शुरू हो और शहर में रिंग रोड हो जिसकी वजह से ट्रैफिक शहर में कम हो।
और बस आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने कुछ परियोजनाओं के बारे में बताया, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, क्या कोई टाइमलाइन है कि ये कब तक जो है इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, जो मेट्रो की आपने बात की?
देखिए, दो मेट्रो रेलवे प्रोजेक्ट का तो भूमि पूजन मेरे ख्याल से हो चुका है और एक मेट्रो का लाइन भी प्रस्तावित है। लेकिन देखिए क्या होता है कि ऐसे जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, मेट्रो है या मोनो रेल है या कोई रस्ते का काम है, देखिए यहाँ हम जानते हैं कि हम हिंदुस्तान में जो है यहाँ क्या होता है, ऐसे रोड्स का काम जब शुरू होता है, ऐसे प्रोजेक्ट्स का काम जब शुरू होता है तो काफी दिक्कतें आती है एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टेज पे। तो उस वजह से ये जो टाइमलाइन जो है ना वो ओवरशूट हो जाते हैं।
और बस जाते जाते आपसे ये सवाल पूछना था कि पुणे में बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी आते हैं, और विद्यार्थी आते हैं तो वो भी उनमें से कई हैं जो शायद अपने 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो लाते हैं, क्या ये भी एक कारण है कि पुणे में इस तरह की खबर है कि ज्यादा व्हीकल्स है, मोर देन पीपल, क्या ये भी एक कारण हो सकता है दैट इट्स अ बिग स्टूडेंट सिटी?
हाँ, ये भी सही है क्योंकि पुणे को कहा जाता है ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट और वहां पे जैसा आपने कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो काफी बड़े पैमाने हैं। तो वो गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, जैसे सिम्बायोसिस है, भारती विद्यापीठ है, MIT है, DY पाटिल है, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कभी कभी बाहर के राज्यों से आते हैं, पुणे के बाहर के जो शहर है महाराष्ट्र में वहां से आते हैं, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल है अपने व्हीकल्स के को लेकर। तो इस वजह से भी शायद होगा कि पुणे में व्हीकल्स की आबादी इतनी बड़ी है।
जी धवल, हमें पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया पल्लवी जी।